बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और आज हम अंदाज़े जहां में इराक में बदमनी और फिरका वारियत फैलाने की साजिश का जायजा लेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, इराक में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो गैर मुतवक्के नहीं है। अमरीका के इराक से निकल जाने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अमरीका, जिसने भरपूर कोशिश की, आखिरी वक्त तक उसने ये कोशिश की कि उसके कुछ फौजियों को इराक में अदालती इस्तिस्ना के साथ बाकी रहने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इराकी क़यादत ने उसका मुतालबा मुस्तरद कर दिया और उसको अपने तमाम फौजी इराक से निकालने पड़े और इराक से कब्जा ख़त्म करने का ऐलान करना पड़ा। तो ये तवक्को की जा रही थी कि इराकी क़यादत को और इराकी अवाम को अमरीका चैन से नहीं बैठने देगा। चुनांचे जब अमरीका ने इराकी क़यादत से ये मुतालबा किया कि उसके कुछ फौजियों को इराक में अदालती इस्तिस्ना के साथ बाकी रहने की इजाज़त दी जाए, तो अल इराकिया इत्तेहाद ने इस मुतालबे की पुरजोर हिमायत की, लेकिन अराकीन पार्लियामेंट की अक्सरियत ने और हुकूमत ने और इराकी अवाम ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। और अल इराकिया इत्तेहाद का जहां तक सवाल है, अमरीका की जानिब से इसकी हमेशा पुष्टपनाही की गई। इराक में इंतखाबात के जमाने में ही अमरीका ने इसकी हिमायत की, अरब मुल्कों से इसकी माली हिमायत की गई और इंतखाबात खत्म होने के बाद ऐसी हालत में कि अल इराकिया इत्तेहाद के अराकीन की तादाद कुल 90 थी, लेकिन अमरीका ने भरपूर कोशिश की कि वजीर आजम या सदर अल इराकिया इत्तेहाद से लिया जाए, लेकिन इराकी पार्लियामेंट की अक्सरियत ने कुछ और फैसला किया और अगरचे अल इराकिया इत्तेहाद हुकूमत में शामिल हुआ, लेकिन हुकूमत के खिलाफ और इराकी अवाम के खिलाफ इसकी साजिशों का सिलसिला जारी रहा और जिसका सबूत इराक के सिक्योरिटी इदारों ने फराहम किया, जमा किया और उससे साबित हुआ कि अल इराकिया इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले इराक के नायब सदर तारिक अल हाशमी मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं और बहुत से दहशत गर्दाना हमले जो ज़ायरीन, आज़ादारों और खास तौर पर पार्लियामेंट के सामने जो धमाका किया गया और जिसका मकसद इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी को कत्ल करना था, इसमें तारिक अल हाशमी का हाथ रहा है। तारिक अल हाशमी के मुहाफिजीन जो गिरफ्तार किए गए, उन्होंने जो इकबाली बयान दिया है उसमें साफ और वाजे तौर पर उन्होंने बताया कि ये जितने भी धमाके हुए हैं इनकी साजिश और इनकी मनसूबाबंदी में तारिक अल हाशमी का हाथ रहा है। इराक की अदालत आलिया ने तारिक अल हाशमी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद उन्होंने इराक से भागने की कोशिश की जो नाकाम हो गई और इसके बाद वो इराकी कुर्दिस्तान चले गए। इराक में पहले वो सुलेमानिया गए थे और वो समझ रहे थे कि तालिबानी की जानिब से सुन्नी होने की बिना पर शायद उनकी पजीराई की जाए, लेकिन वहां पजीराई नहीं मिली तो वो अरबिल चले गए। और आज बगदाद में जो कयामत टूटी है और जो बम धमाके हुए हैं जिनमें 63 से जायद इराकी अवाम शहीद और 200 के करीब जख्मी हुए हैं, इसका ताल्लुक भी अल इराकिया और हुकूमत के दरमियान कशीदगी से बताया जाता है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार यावर बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
बुखारी साहब, आज बगदाद में जो बम के धमाके हुए हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है?
बारे में आपकी राय क्या جی استعماری قوتوں نے جن جن علاقوں میں قدم رکھے وہاں پر بدامنی جو ہے وہ ان علاقوں کا مقدر ٹھہرا ہے، یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ یہ استعماری قوتوں نے عراق میں قدم رکھے، عراق کا جو ہے وہ امن و امان تباہ ہو گیا، یہ ہمارے اس علاقے میں آئے، افغانستان میں انہوں نے قدم رکھے، وہاں پر ہوا، اور ہر جگہ پہ یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ استعماری قوتوں کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور لیکن یہ استعماری قوتوں کا جو پشت پناہ ہے، سب سے بڑا دائی ہے وہ امریکہ، وہ باز نہیں آتا دنیا کا امن تباہ کرنے میں۔ آج جو بغداد میں یہ قیامت ٹوٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعمار نے چونکہ یہ علاقہ خالی کرنا تھا، اور اسی طریقے سے اب انہوں استعماری قوتوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ افغانستان کو بھی خالی کرنا ہے، اور اس کی بھی انہوں نے تاریخ دے رکھی ہے، اور 2014 تک انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خالی کریں گے۔ تو اس سے جانے سے پہلے انہوں نے میرے تجزیے کے مطابق انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہاں پر فرقہ واریت، فرقہ پرستی کا بیج بویا، اور اپنے ایجنٹس جن کو عرف عام میں شدت پسند کہا جاتا ہے، یہ شدت پسند جہاں کہیں بھی ہیں یہ استعماری قوتوں کے ایجنٹ ہیں، امریکہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں، العراقیہ ہو جائے، العراقیہ کا اتحاد ہو جائے، اس میں شامل دیگر جماعتیں ہو جائیں، ان میں جو شدت پسند ہیں ان کا ایک ہی طریقہ واردات ہے کہ وہ انہوں نے ایک نرسری تیار کر رکھی ہے، پنیری جو ہے جسے تیار کر رکھا ہے، جس سے خودکش حملے بھی کرواتے ہیں، بم دھماکے بھی کرتے ہیں، اور یہ معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی ایک انہوں نے یہ طریقہ واردات استعماری قوتوں نے کیا ہے کہ جہاں جہاں انہیں حزیمت اٹھانی پڑی وہاں انہوں نے یہ اپنے ایجنٹ جو ہیں، اعلی کار جو ہیں، ان کو انہوں نے فعال کر دیا، اور ان کو ان کی کارکردگی جو ہے ان کو بڑھانے کے لیے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ عراق میں یہ جو آج بم دھماکے ہوئے یہ قابل مذمت انسانیت سوز دھماکے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی وہی شدت پسند عناصر جو ہیں جن کی امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے، جن کو امریکہ نے اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے کہ جہاں اسے حزیمت اٹھانا پڑی وہاں کے عوام سے ریونج لیا جائے، وہاں کے عوام سے بدلہ لیا جائے، اس لیے امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پر یہ جو ہے یہ دھماکوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور عراق کو خصوصاً جو ہے، چونکہ عراق میں 3 سال رہنے کے باوجود امریکہ کو جو ہے وہاں پر 9 سال رہنے کے باوجود عراق میں امریکہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہ درست ہے کہ اس جنگ میں عراقی عوام کو امریکی ایجنٹ صدام حسین سے نجات مل گئی، اور عراقی عوام کو یہ گزشتہ انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنی ایک منتخب وزیر اعظم نور مالکی کو جو ہے انہوں نے منتخب کیا، اور انہوں نے اپنی ایک منتخب حکومت بنائی۔ اب اس منتخب حکومت میں ظاہر ہے عراق میں ایک ہی مسلک کے لوگ نہیں ہیں، عراقی معاشرے کی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہاں پر فرقہ واریت کبھی نہیں تھی، لیکن جب سے استعماری قوتیں آئیں انہوں نے 9 سال سے یہ بیج بونا شروع کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ انہیں یہاں پر کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، انہوں نے یہاں پر اپنے ایجنٹ چھوڑنے تھے، انہوں نے شدت پسندوں کو یہاں ان کو ابھارا اور ان کی پشت پناہی کی، اور ان کو انہوں نے وہاں پر ہر چیز ہر طرح کی جو ہے وہ امداد فراہم۔
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔
اب وہ جو ان کے ایجنٹ تھے انہوں نے دیکھا کہ امریکہ جا رہا ہے اور عراق پر جو ہے عراقی عوام کی اکثریت کی حکومت ہے، تو وہ جو اقلیت میں جو کم لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ اب امریکی اما پر ہی، استعماری قوتوں کی پشت پناہی پر ہی انہوں نے اب عراقی عوام کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراقی عوام پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے
شکریہ جناب بخاری صاحب
استعماری قوتوں کو، ان شدت پسندوں کو پہچانے اور ان کی مذمت کرتے ہوئے ان کو مسترد تو انہوں نے کر ہی دیا ہے
جی،
تو اب وہ جو ہیں اب چونکہ انتخابات میں کچھ سیٹیں لے کر وہ آ گئے تھے اور ان کو کچھ وزارتیں بھی دی گئی تھیں، تو وہ قوتیں جو ہیں وہ اب پارلیمنٹ سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے اور سازش کے تحت، اور یہ ایک سازش ہے کہ یہ منتخب حکومت۔
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور ناظرین ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب۔ شمسی صاحب السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام
جی شمسی صاحب، بغداد میں جو آج دھماکے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ یہ طارق الہاشمی نے ہی کچھ گل کھلایا، کیونکہ اس کا تو کنیکشن تھا دہشت گردوں سے، اور اس کے ایک رد عمل کے طور پر دکھانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، اور امریکنز جو ایک امپریشن یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ملک چل نہیں سکتا ہے یا وہاں کا نظم و نسق سنبھال نہیں سکتے عراقی، شاید یہ میسج بھی دینے کی کوشش ہو، لیکن فی الحال تو ان دھماکوں کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، طارق الہاشمی کا فرار عراق سے، اور جو اس کے ایجنٹ تھے جو اس نے اتنے دنوں پیدا کیے اور جو اس طریقے سے اس نے وہاں آبیاری کی، دہشت گردی کی، یہ اسی کا ثمرہ ہے، بالکل نظر آ رہا ہے، صاف صاف لگتا تو یہی ہے، اب پوری طریقے سے تو نہیں معلوم، ہم وہاں بیٹھے بھی نہیں ہیں عراق میں، لیکن بظاہر آدمی جب باہر سے دیکھتا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اسی کا رد عمل ہے، اور شاید طارق الہاشمی کے ایجنٹ کے میسج دینا چاہتے ہیں پورے عراقی عوام کو کہ اگر تم نے ان کے خلاف جو وارنٹ ہے واپس نہیں لیا، اگر ان کو بحال نہیں کیا ان کا جو بھی ہے، تو وہ ایسے ہی اور دھماکے کروائیں گے۔
جی شمسی صاحب، طارق الہاشمی نے شیعہ سنی کا مسئلہ عراق میں اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے خلیج فارس ٹاؤن کونسل کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور خط لکھ کے انہوں نے باضابطہ درخواست کی ہے کہ عراق میں مداخلت کی جائے، خلیج فارس ٹاؤن کونسل اور عرب لیگ دونوں مداخلت کریں، اور عراق کے جو 6 صوبے سنی صوبے ہیں ان کو عراق سے الگ کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ ایک طرف تو وہ شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف بغداد جہاں مشترکہ آبادی ہے شیعہ اور سنی دونوں کی، وہاں وہ دھماکے کرواتے ہیں جن میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہیں، تو وہ کس کو سزا دے رہے ہیں، شیعوں کو سزا دے رہے ہیں یا عراق کے عوام کو؟
جی دیکھیے، پورا جو امریکہ اور اس کے حلیف ہیں پورے، ان کی منشا یہی ہے کہ پورے علاقے میں شیعہ سنی قضیہ پیدا ہو، آج سے نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ صدام کے زمانے سے یہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی، قادسیہ صدام اور فلاں اور اس طریقے کی، اس وقت بھی جب کوئی خبر عراق سے آتی تھی تو یہ آتی تھی کہ سنی صدام، لیکن وہ وقت نے بتایا کہ نہ وہ سنی تھا نہ شیعہ تھا، وہ ایک باسی تھا اور ایک وہ ڈکٹیٹر تھا، یہی طارق الہاشمی کا بھی ہے، طارق الہاشمی شروع سے ہی فیڈرل سسٹم کے خلاف رہا ہے، یہ آدمی یہ چاہتا نہیں تھا کہ وہاں پر فیڈرل سسٹم یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ چاہتا تھا کہ جو صوبے ہیں ان کو خود مختاری طریقے سے ملے، کیونکہ یہ امریکہ نے بہت پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ عراق کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، شیعہ سنی اور کرد، اور اس کے لیے بہت پہلے سے ایک چارٹ بن چکا ہے، پلان بن چکا ہے، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس کو آدمیوں کی ضرورت ہے، وہ طارق الہاشمی بیسٹ آدمی ملا اس کو اس کام کے لیے، کیونکہ طارق الہاشمی کے پاس اپنے لیے حمایت جتانے کے لیے کیا راستہ ہے اس کے پاس، سوائے یہ کہ وہ خلیج کے لوگوں میں کہا کہ میں سنی ہوں اس لیے مجھ کو پنش کیا جا رہا ہے، یہ تو کہے گا نہیں وہ کہ میں دہشت گرد ہوں اس لیے مجھ کو سزا دی جا رہی ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ میں سنی ہوں اور مجھ کو سنیت کی بنا پر سزا دی جا رہی ہے، لیکن طارق الہاشمی کو یہ بات شاید نہیں معلوم ہے کہ آج سارا عالم اسلام، نہ ویسے تو اسلام میں 72 فرقے ہیں، لیکن جو بظاہر دیکھنے سے لگتا ہے کہ اسلام کے تمام فرقے جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، اور وہ سب ایک جگہ جمع ہونے کے بعد صرف 2 حصوں میں بیٹھ گئے ہیں، یا تو وہ امریکہ کے حلیف ہیں یا امریکہ کے حریف ہیں، یا امریکہ کے خلاف ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ مجھے نظر نہیں آتا اس وقت، تو یہ سنی پن کا جو ان کا پروپیگنڈا ہے یہ چلے گا نہیں، بحرین میں بھی یہی کیا وہاں کے شاہوں نے سنی بن کے کہ شیعہ آئے آ کے عوام، اس لیے یہ ہو رہا ہے، اور جگہ بھی تماشے بازیاں کی جا رہی ہیں شیعہ سنی کے نام پر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ شیعہ سنی کا کوئی اب مسئلہ رہ نہیں گیا ہے، اب جو ہے نظریہ وہ یہ ہے کہ اسلام کا دشمن کون ہے اور اسلام کا ساتھی کون ہے، ظاہر بات ہے کہ خطے میں امریکہ کے ایک سے ایک بڑے دوست بیٹھے ہیں جو اسی پر ناز کرتے ہیں، جو اپنے کو سنیوں کا اور پاسبان حرم اور دنیا بھر کی باتیں اپنے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، تو طارق الہاشمی ہو یا کوئی بھی ہو، سوکا سنی شیعہ کا کارڈ تو وہ کھیل نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا، کھیلنے کی کوشش بہت کرے، پورے جو بھی طارق الہاشمی کے سلسلے میں جو میڈیا سے خبریں آئی ہیں ان میں یہی لگا کہ شیعہ نور المالکی وزیر اعظم نے، نور المالکی شیعہ وزیر اعظم، سنی نائب صدر، شیعہ وزیر اعظم، سنی نائب صدر، ہر جگہ سے पूरे रॉयटर्स की खबरें उठाकर देख लीजिए, एपी न्यूज देख लीजिए, किसी के भी फैक्ट देख लीजिए आप उठा के, किसी के भी वायर्स आप उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको यही चीज मिलेगी। तो जाहिर बात है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया के पीछे लगा हुआ है, आज से नहीं बहुत दिनों से लगा हुआ है, और उनकी ये कोशिश है कि इराक को बांट दें। आपको मालूम कि हैम्फ्रे के जो एतराफात है उसमें बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि जो चर्च ने साजिशें की थी उसके तहत मुसलमानों के जो ममालिक उनको छोटे छोटे इलाकों में बांटना है, उनके छोटे छोटे खित्तों में बांटना है। तो वो प्लान आज का नहीं है, 250-300 साल पुराना प्लान है जिसके ऊपर अमल करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी ताकत होगी मुसलमान या बड़े मुल्कों की शक्ल में होंगे तो वो उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, वो उनको चैलेंज दे सकते हैं, जब छोटे छोटे होंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अमेरिका, आप देखिए कि बर्तानिया और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इन्होंने क्या किया, कब से ये करते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले मुगल सल्तनत को खत्म किया, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया, इसी तरीके से वो बादशाह रह गए जो उनके कठपुतलियां थी, ईरान का बादशाह को छोड़ दिया क्योंकि उनकी कठपुतली था, और जगह जगह जहां के ऊपर आमिर बिठाना थे बिठा दिया उन्होंने। तो लेकिन ये कोई साजिश मैं समझता हूं नई नहीं है कि जो तारिकुल हाशमी ने शुरू की है कि 6 सूबों को सुन्नी रियासत बनाने के लिए वो दिया जाए, ये अमरीकनों की साजिश है और बर्तानिया की साजिश है, बहुत पुरानी साजिश है और इसी पर वो अमल दरामद करना चाहता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इराक के अवाम इस चीज को नहीं चाहते हैं। बगदाद जो जुल्म और सितम का निशाना बन रहा है, वो शिया सुन्नी के नाम पर उसको बनाया जाता है, कभी कभी उसको किसी कुर्दों के नाम पर मनाया जाता है कि कुर्दों की तरफ से हो रहा है, इस तरीके की चीजें चली आ रही हैं। और इराक की तो तारीख रही, इस तरीके के लोग वहां, इस तरीके के जालिम वहां पनपते रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इराकी अवाम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, और वो ये समझते हैं कि जो भी इराक की तकसीम की बात कर रहा है वो इराक का दुश्मन है, वो जो इराक का दुश्मन है वो शिया सुन्नी का हमदर्द कैसे हो सकता है। तो यह बात है क्योंकि इराक को मुत्तहिद नहीं रहने देना चाहती जो ताकतें, वो इराक की दुश्मन है और तारिकुल हाशमी उसका सर्वे सर्वा है। तो मुझे नहीं लगता कि तारिकुल हाशमी को कोई कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अगर उसको कामयाबी मिलने की उम्मीद होती तो वो इराक से फरार नहीं करता, वो यहां से भागता नहीं। अब यही कर सकता है खाली कि वो अपने एजेंटों के जरिए से बम धमाके कराता रहे, और जाहिर बात है कि उसको पुष्टपनाही हासिल है खलीजी ममालिक के, दूसरे खलीजी ममालिक की भी, खासतौर से सऊदी अरब के लोग उसके आगे पीछे लगे हुए होंगे, और कई मरतबा इराक की गवर्नमेंट भी बात कह चुकी है कि सऊदी एजेंटों को पकड़ा है उन्होंने जो सऊदी अरब से आकर वहां दहशतगर्दी कर रहे थे। तो ये सब होगा, शायद अभी और इराकियों को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी वहां से अपनी आजादी को बचाने के लिए। हो सकता है कि इराकियों का और बमों के ब्लास्टों अभी चेलू मारा है, उसमें लाखों आदमी, आपको मालूम है कि जितना बड़ा इज्तिमा इराक करबला में होता है, जहां जहां से कहां कहां से लोग पैदल आते हैं चलकर मीलों दूर से, मैंने खुद देखा है कि नजफ से और बगदाद से जो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर, और उससे भी दूर दूर के इलाकों से आते हैं, 250 किलोमीटर का फासला तय करके पैदल आते हैं, उन पर हमले होंगे। तो ये सब तो अभी होगा, और इराकियों को बेचारों की किस्मत में ये शायद लिख गए हैं, अमरीकनों ने लिख दिया है कि कोई ना कोई एजेंट अमरीका का वहां रहे और इराकियों को कुछ तो खून में मुबतला करता रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। और नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर साकिब अकबर साहब से। साकिब अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
साकिब अकबर साहब, अमरीकी अफवाज के निकलते ही और इराक से अमरीका का कब्जा खत्म होते ही अल इराकिया इत्तेहाद हुकूमत से भी अलग हो गई और पार्लियामेंट से भी।
जी जी,
इसका क्या रहा कि जब तक अमेरिका रहा वो हुकूमत में भी शामिल रहे और पार्लियामेंट में भी मौजूद रहे, और अमेरिका के जाते ही उन्होंने हुकूमत से भी अलायदगी अख्तियार कर ली और पार्लियामेंट से भी उनके अराकीन ने इस्तीफा दे दिया।
देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि अगर अल इराकिया का माजी देखा जाए और पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह से उनको फंडिंग की गई है, क्लियर कट जब इंतखाबात हुए तो फिर जिस कदर सऊदी अरब का पैसा उसमें लगा और जैसे इक्तदार उनको हवाले करने के लिए कोशिश की गई, 6 माह तक जो है वो ये सिलसिला जो है वो मुअल्लक रहा, हुकूमत ना बन सकी, तो ये सारे का सारा उनकी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो इक्तदार इस ग्रुप के हवाले कर दिया जाए कि जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी और जिसको इलाके की उन हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल थी जो अमेरिका की गर्विदा है या उसकी जुल्फ की असीर है। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने जाने के बाद जब अपनी मौजूदगी में वो ये कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो वो ये साबित करना चाहता है कि जनाब जो कुछ अमन अमान कायम था वो हमारी बरकत से था, और अब अगर हम यहाँ से चले गए हैं तो आप ये देखें इराकी जो है वो कैसे आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो दुनिया पे साबित करना चाहता है कि ये हमारी मौजूदगी से ही, या एक जवाब मेरा ख्याल है पैदा करना चाह रहा है कि हमारी मौजूदगी से मसले को हल करें। मेरा ये भी ख्याल है कि जैसे शाम के मसले में और जैसे बाज़ दीगर मसाइल में इसको अरब लीग को इस्तेमाल किया गया है, बईद नहीं है कि अरब लीग को इराक के खिलाफ भी और इराक के मसाइल में भी दखील करने की कोशिश की जाए। और इस वक्त सऊदी अरब अगर डायरेक्ट ना आ सके बाज जगहों पर, तो बाज जगह पे आपने देखा है कि खलीज तआवुन काउंसिल का नाम इस्तेमाल किया गया है और बाज जगह अरब लीग का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर ये जो पार्लियामेंट से निकल गए हैं और अगर ये इस्तीफे के बाद सीटें जो है वो खाली हो गई हैं, तो थोड़ा सा हौसले सबूत दें गवर्नमेंट भी और बाकी जो उसके अलाइज हैं और जो समझते हैं कि आपस में इत्तेहाद के साथ जो है वो इराकियों को रहना चाहिए, तो जो खाली सीटें हैं उस पर एक बार फिर इंतखाबात करवा के देख लिया जाए। जब अमेरिका की मौजूदगी में जो है वो अल इराकिया या अमेरिका के मफादात के तर्जमान जो है वो बरसर इकतदार नहीं आ सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा वो जो है वो बरसर जो है वो आ सकेंगे। और इस वक्त एक दफा फिर इराकी क्यादत जो जिसने बहुत ही दानिशमंदी का सबूत दिया है, बड़ा ठहराव का सबूत दिया है और अपने मुल्क को अमरीकी फोर्सेस से आजाद करवा लिया है। अब 200 से या बल्कि 150 से भी कम अफराद अमरीकी फौजी जो है वो मौजूद रह गए हैं जो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। अगर पूरे उनके बयानात को उठा के देख लिया जाए तो वो नहीं जाना चाहते थे, बल्कि उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ अड्डे उनके हाथ में रह जाए, लेकिन इराक कमाल इत्तेहाद का सबूत देते हुए आखिरकार उनको निकाल दिया। बल्कि वो तो ये चाहते थे कि जो रह जाए तरबियत के नाम पर उनको भी इस्तिस्ना मिल जाए और वो उन पर इराकी कानून जो है वो नाफिज ना हो सके। इराकियों ने जब ये भी तस्लीम नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि अब अमेरिका के जाने के बाद इस तरह का ये उनके पास मेरा ख्याल है ये त्रुप का आखिरी पत्ता है जो वो उन्होंने खेल लिया है। और उसके बाद अगर इंशाल्लाह इराकी क्यादत ने जो है वो दानिशमंदी का सबूत दिया जिसका हमें बहुत ही तवक्को है, तो ये मसला भी बड़ी कामयाबी के साथ इसको निकल जाएगा। जरूरत तो इस बात की है कि अब इराकी अपनी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो तवज्जो दे। जो उनके उनकी तबाही आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनके जो तेल की तनसीबात तबाह हुई हैं उसकी तामीर करें। और जो इस वक्त गुज़श्ता दिनों बयान आया है अपना सुप्रीम काउंसिल ऑफ इराक, इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ इराक के लीडर का के जो है वो तमाम के तमाम सूबे इराक के जो है वो इस तरह के हैं कि हर एक जो है वो किसी दूसरे की कोई जरूरत को पूरा करता है। तो इराक की जो उनका माजी है, उनकी जो तारीख है, वो उनको मजबूर करती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहें। इसके अलावा जो इर्द गिर्द की हुकूमतें हैं, शाम है और ईरान है और जो अपना तुर्की है, वो सब ये चाहते हैं। पहले भी वो कह चुके हैं, उन्होंने आपस में मीटिंग की है कि हम एक इराक देखना चाहते हैं। अगर ये उनके हमसाया ममालिक ये भी उनको तकबीयत करें उनके इत्तेहाद की और दाखिली तौर पर भी ये क्यादत जो है वो समझदारी का सबूत दे जिसकी हमें बड़ी तवक्को है, तो मेरा ख्याल है कि इस मसले से पर भी वो काबू पा लेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। बुखारी साहब, अमरीका और बाज अरब हुकूमतों ने, जिनमें सऊदी हुकूमत बिल्कुल आश्कारा तौर पर सामने थी, इंतखाबात के मौके पर भी अल इराकिया की भरपूर हिमायत की, और इंतखाबात के बाद जैसा कि साकिब अकबर साहब ने इशारा किया अपनी गुफ्तगू में कि 6 महीने तक हुकूमत नहीं बन सकी, अमेरिका और अरब हुकूमतों की मुदाखलत के सबब इनकी पूरी कोशिश रही है कि इक्तदार अल इराकिया को दे दिया जाए, जबकि अल इराकिया के पास कुल 90 सीटें थी और इसके मुकाबले जो नेशनल अलायंस था उसके पास इसकी दुगनी सीटें थी। इस हिमायत के पीछे क्या राज था?
जी दरअसल ये इराक में ये उस वक्त जो ये सऊदी अरब और दूसरे दिगर खलीजी ममालिक ने इनकी अल इराकिया की हिमायत की थी, वो वहां पर चूंकि ये एक आमरियत खत्म हुई थी और अमेरिका वहां पर आ धमका था और अमेरिका जो है वो अपने दोस्तों की हुकूमत बनाना चाह रहा था, अब भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम ममालिक में, जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक में बादशाहतें कायम हैं, वो अमेरिका दोस्त और अमेरिका नवाज बादशाहतें हैं, और वो अमेरिका ही के मफादात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने ये देखा कि ये जो इस खित्ते में अमेरिका के मुखालिफ, इस्तेमार मुखालिफ लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर इस्तेमार के हामियों की हुकूमत बनवाई जाए। इसी वजह से अमेरिका के दोस्तों ने यहाँ पर अपना अरब होने का असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अल इराकिया की मदद की थी। अब मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, खुसूसन जहाँ मुस्लिम ममालिक में अमेरिका ने अपनी साजिशें शुरू कर रखी हैं, वहाँ पर फिरका वारियत एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन अमेरिका जो है उसने एक तीसरा फिरका जो है वो शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद के नाम से उनकी वो सपोर्ट की जा रही है। जो बाइडन जो अमेरिकी नायब सदर हैं, वो नूरी मालकी की हुकूमत के खिलाफ उनकी साजिशें आशकार हैं। और अभी उन्होंने ताज़ा तरीन जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि तालिबान जो हैं वो अमेरिका के दोस्त हैं। तालिबान क्या है यहाँ पाकिस्तान में? तालिबान क्या है? ना सुन्नी तालिबान है, ना शिया तालिबान है, ये तो तालिबान नहीं है। सिर्फ शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद कुव्वतें जो हैं उन्हीं का नाम तालिबान है यहाँ पर। और वही तालिबान जो हैं वो इराक में भी हैं, वही इधर भी हैं। उन्होंने वही इंतहा पसंद कुव्वतें जो हैं वो पैदा कर रखी हैं, और वो इस्तेमार दुश्मन, इस्तेमार मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनको कमज़ोर करने के लिए ये सारी साजिश चल रही है। इराक में ये जो साजिश हुई है ये भी वही इंतहा पसंद जो और शिद्दत पसंद जो लोग हैं, इस्तेमार के जो साथी हैं, वो ये कर रहे हैं। अल इराकिया के पास, हालांकि इस हुकूमत ने कमाल नूरी मालिकी जो मुंतखब वजीर आजम है, उन्होंने कमाल फराखदिली का मुजाहरा करते हुए 90 सीटों के साथ उनको 8 वजारतें भी दे रखी थी, उनके पास वजारतें भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो वजारतों में होने के बावजूद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वो साजिशों में मसरूफ रहे अल इराकिया वाले। जब तक अमेरिका उनके सर पर वहाँ मौजूद रहे, अमेरिकी फौजी मौजूद रहे, वो हुकूमत में रहे, और जब अमेरिकी फौजी चले गए उनका चेहरा जो है वो सामने वो बेनकाब हो गए। तारिक अल हाशमी जो है, उसके जो मुहाफिज है मरवान दलीमी, उसने तस्लीम किया कि तारिक अल हाशमी ने, वो जो पार्लियामेंट के करीब जो बम धमाका हुआ उसमें तारिक अल हाशमी इन्वॉल्व था, उसके खुद जो अपना उसका मुहाफ़िज़ है, जब वो तस्लीम कर रहा है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि तारिक अल हाशमी जो था वो शिद्दत पसंद है, और वहाँ पर वो दहशत गर्दों की सरबराही करता है, और वो वहाँ से बफरूर हुआ है। एक दफ़ा वो इराक से जाने की भी कोशिश की, वो उसको पकड़ा गया, लेकिन वो जो है वो वहाँ से फरार होकर कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में, वो जो उसका इंतजामी सरबराह है इराकी कुर्दिस्तान का, मसूद बारदानी जो है, उसके पास उसने उसे पनाह दे रखी है, और वहाँ पर वो बैठा हुआ है। और अब वो अपने एजेंडों के जरिए शिया सुन्नी दोनों को मरवा रहा है बगदाद में। मैं नहीं समझता कि यहाँ हम पाकिस्तान की मिसाल दे सकते हैं, पाकिस्तान में शिया सुन्नी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वो जो शिद्दत पसंद इंतहा पसंद हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और मासूम लोगों को, शियों को भी मार रहे हैं और सुनियों को भी मारते हैं। बम धमाका होता है, वो ये नहीं देखता कि ये कितने सुन्नी मरे हैं, कितने शिया मरे हैं, आम इनोसेंट मासूम जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ये सारी एक साजिश है कि जहाँ कहीं अगर इस्तेमार दोस्त हुकूमतें कायम ना की जा सकें, तो इस्तेमार मुखालिफ हुकूमतों को भी कायम ना रहने दिया जाए और उनकी कुव्वत को पारा पारा कर दिया जाए। अब ये मैं समझता हूँ कि इराकी अवाम पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इत्तेहाद को कायम रखें, इस्तेमार की साजिशों में ना आए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो अरब लीग है या ये खलीज फारस तावन काउंसिल जो है, ये इस्तेमारी कुव्वतों के हमनवा और उनके दोस्त लोग हैं। ये चाहते हैं कि अगर इस्तेमार दोस्त यहाँ पर मुआशरा कायम नहीं होता और यहाँ पर इस्तेमार दोस्त हुकूमत कायम नहीं होती, तो भले इराक को तकसीम करना पड़ जाए तो उसको तकसीम कर दिया जाए। अब ये इराकी अवाम ने देखना है कि वो अपनी तकसीम को बर्दाश्त करते हैं या अपने इतिहास से इस्तेमार दोस्त कुव्वतों को शिकस्त से, जिस तरह उन्होंने इस्तेमार को शिकस्त से दोचार किया, इसी तरह उन कुव्वतों को भी शिकस्त से दोचार करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। जनाब, इराक के नायब सदर तारिक अल हाशमी फरार करके वो कुर्दिस्तान चले गए, इराकी कुर्दिस्तान। पहले वो सुलेमानिया गए थे और जलाल तालिबानी की तरफ से पनाह न मिलने के बाद वो चले गए अरबील, जहां इराक की मकामी इंतजामिया के सरबराह मसूद बारजानी साहब का अमल दखल है और वहाँ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि वो अदालती कार्रवाई और तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक तो ये कि मुकदमा जो चलाया जाए वो कुर्दिस्तान में चलाया जाए, बगदाद में न चले। दूसरी बात यह है कि तहकीकात में खलीज फ़ारस टाउन काउंसिल और अरब लीग के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। उनकी शर्त के बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो यहाँ हिंदुस्तान में खबरें आई हैं उसके हिसाब से वो वहां से भी फरार हो गए हैं। मुझे ऐसे
कुर्दिस्तान से
जो एजेंसी की खबर आई और वो तुर्की के इलाके में पहुंच गया है।
अच्छा।
तो वो शायद हो सकता है कि इस बारे में कंफ्यूजन है, मुझे अभी पूरा मालूम नहीं। लेकिन जहां तक बरजानी का ये ने पनाह देने का मामला है तो हो सकता है कि वो बरजानी ने उसको पनाह दी हो और वहां पर चाहेगा कि वो इसको पॉलिटिकल गेम खेले और अपना तसल्लुत बनाए। इस वक्त क्या चाह रहे हैं बरजानी टाइप के लीडर और ये मिलकर दोनों, ये जो शर्तें रखी जा रही हैं नई नई किस्म की जो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अदालत वहां जाए, वहां पर कायम हो और वहां पर गवाह हो, जो गवाह हो वो तोड़े जाए, उनको धमकाया जाए, उनको डराया जाए। जाहिर बात है कि अदल तो नहीं हो सकता, इंसाफ तो नहीं हो सकता कि मुलजिम जहां चाहे वहां अदालत जाएगी। ये किस मुल्क में हो सकता भाई? तो ये एक अजीब सी उन्होंने शर्त रखी है। और जहां तक गल्फ काउंसिल को इन्वॉल्व करने का मामला है, जाहिर बात है कि वो सिर्फ एक हमदर्दी लेने के लिए ये तमाशाबाजी की जा रही है, सुन्नियत के नाम पर अहले तसन्नुन को एक तरफ करने के लिए। मैं अर्ज कर चुका हूं कि अहले तसन्नुन पर कोई असर होने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और हर बात सोचने लगे हैं कि अब मुसलमानों के सिर्फ दो गिरोह हैं और मसलकी जो तासुब है वो खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी है फिक्री वो है कि हम इस्तेमार के साथ हैं कि हम इस्तेमार के खिलाफ हैं, तो उससे भी कोई फायदा। और जाहिर बात है कि गल्फ काउंसिल की तरफ देखना या अरब लीग की तरफ देखने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि मिल्लत इस्लामिया को मसलकों के नाम पर बांटा जाए और इराक को भी मसलक के नाम पर बांटा जाए। लेकिन जो उसने शर्त रखी है, मैं नहीं समझता कि वो शर्त कोई भी मानेगा या कोई भी सेन आदमी, जिसे कहते हैं इनसेन आदमी, भी नहीं मानेगा उसको। सेन आदमी तो कैसे मान लेगा ये शर्त कि वहां उसके लिए अदालत ले जाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त भी बरदानी के, मसूद बरदानी के पास ही है। जैसा कि हिंदुस्तान में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो वो तुर्की भाग गया है, तुर्की के उस इलाके में पहुंच गया है जहां पर तुर्की का कंट्रोल है। लेकिन जो कुछ उसने किया है और जो कुछ आज होने वाला है उसके बहुत संगीन नतायज इराक के अवाम को भुगतना होंगे। और वाकई में जो दौर आ रहा है बहुत खराब दौर आ रहा है। और जाहिर बात है कि मसलक के नाम पर भड़काना वहां के लोगों को चाहेगा। पहले ही से आप जानते हैं कि जो कुर्दों का इलाका है वो तकरीबन सेमी ऑटोनोमस हो चुका है। वो जन्नत जो अमेरिका ने तराशी थी सद्दाम के हमले के वक्त, 91 से ही उसने नो फ्लाई जोन कर रखा था। तो एक इलाका तो ऑलरेडी है तकसीम शुदा, दूसरा ये छह सूबे जो हैं सुन्नियों के, इनको भी कोशिश यही की जाएगी कि वहां पर मुजाहरे किए जाएं, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएं, वहां पर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों और उसके बाद एक कोई सरहद कायम कर दी जाए। ये सारी कोशिशें होंगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इस चीज के पीछे हैं कि जिसको रोक पाना इराक के अवाम की बस की बात नहीं लगती। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि वो इराकी अवाम को इतनी ताकत दे कि उनको समझ में आए कि कौन उनका दुश्मन है और किस तरीके से साजिशें हो रही हैं इराक को बांटने की और इराक को तकसीम करने की। जाहिर बात है कि जब इराक तकसीम होगा तो मुस्तकबिल में कोई भी इराकी लीडर कुवैत पर अपने कब्जे की बात नहीं कर सकता। कुवैत जो इराक का हिस्सा था, जो काट के जिसको अंग्रेजों ने अलग कर दिया, उसके बारे में कौन बात कर सकेगा जब अपने ही तीन टुकड़े और हो जाएंगे? तो बहरहाल छोटे छोटे फवायद के लिए, छोटी छोटी जगहों पर कब्जा करने के लिए इराक की जड़ें काटने पर दरपे हैं ये लोग, चाहे वो बरदानी का ग्रोह हो, चाहे वो कुर्दिस्तान के लोग हों वो हों, और चाहे ये हो तारिकुल हाशमी। खैर तारिकुल हाशमी तो मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ दहशतगर्द है, क्योंकि उसने कई मरतबा कहा है, ये आज की ने बात नहीं है, उसने पहले भी इससे पहले कहा कि पाकिस्तान में जो इराक में जो बम धमाके हो रहे हैं वो इराकी अलकायदा नहीं करती बल्कि यहाँ के हुर्रियत पसंद अवाम कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से उनको अंदर ही अंदर एक फूंक भरता था उनके अंदर कि तुम हुर्रियत पसंद हो, तुम दहशतगर्द नहीं हो। ये उसने कई मरतबा किया और कई मरतबा कहा और उसी को प्रोजेक्ट करना चाहता था। अब चूंकि अमेरिकन फौजें चली गई हैं तो उसके लिए और रास्ता खुल गया है। क्योंकि पहले तो अमेरिकन को कहना पड़ता कि हमारी मौजूदगी में तुम ये सब कर रहे हो, उन्हीं का आदमी है। अब अमेरिकन चले गए तो अमेरिकन को ये कहने का मौका है कि भाई हमारे जाते ही वहां सब हो गया, देखिए हम तो संभाले हुए थे, हम तो इस कदर वहां को सुकून के साथ था और ये सब जो कुछ हो रहा है हमारे जाने के बाद हुआ है। तो ये एक तरीके से दुनिया पर ये भी साबित करने की कोशिश है कि अमेरिकन का इंतजाम या अमेरिकन की गुलामी में इराकी बहुत खुश थे और अमेरिका के जाते ही उनको सारी मुसीबतें उन पर आ गई हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब।
जी जी
जनाब, 9 साल तक अमेरिका इराक पर काबिज रहा और उसका अमल दखल रहा, उसने 9 साल कोशिश की इराक को फिरका वारियत के हवाले करने की, मुसलसल कोशिशें की लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। अब उसके जाने के बाद एक बार फिर जो इराक को फिरका वारियत के हवाले करने की रेशा दवानियां तेज हो गई हैं, इस मरहले से आप क्या समझते हैं इराकी कयादत निकल पाएगी? अगरचे नूरी मालिकी की जो गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बहुत ही पुरेतमाद लहजे में ये कहा है कि जो मौजूदा मसला है इसको हल करने में हमें किसी भी बैरूनी ताकत की मुआवनत की और तआवुन की जरूरत नहीं है, इसको हम खुद हल कर लेंगे, बस बैरूनी ताकतें और अरब ममालिक हमारे मामले में मुदाखलत न करें। लेकिन क्या आप
जबरदस्त बात की है
जी
नूरुल मालकी ने, और इराकी आवाम के मफादात की बात जो है वो इसी में मुजमिर है और छुपी हुई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जब के अमरीका इराक से निकल गया है, अगरचे उसने इसको बाज जो माहरीन मईशत और जिन लोगों ने एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पे नजर रखी है उनका ख्याल ये है कि अमरीका को $3 खरब जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर जो है वो खर्च उठा है। लेकिन ये हमें नजर रखना चाहिए कि अफवाज के निकल जाने के बाद भी $600 अरब से ज्यादा रकम इराक के अमूर के लिए अमेरिका ने मुख्तस कर रखी है। तो जाहिर है सवाल पैदा होता है कि ये रकम अमेरिका इराक में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ये रकम उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा जिन मकासद में वो वहां अपनी फौज के होते हुए नामुराद और नाकाम रहा है। उनमें से एक ये है शिया सुन्नी मसले को उभारना और डिस्टेबलाइज करके जो है वो इस इराक को रखना ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और रिकंस्ट्रक्शन में और बाकी अमूर में उसकी ज्यादा से ज्यादा एहतियात जो है वो इराक को बाकी रहे। मेरा ये ख्याल है कि अगर इराकी क्यादत ने जितना फूंक फूंक पे कदम रखा है और जिस तरह से उसने अमेरिका को 2008 से ऑनवर्ड मरहला ब मरहला शिकस्त से दो चार किया है और निकल जाने पर आमादा और मजबूर कर दिया है, ये बात ये उनकी इंतहा दर्जे की समझदारी और दानशी का इससे इजहार होता है। यानी इतनी समझदार वो क्यादत है। दूसरी की बात है कि जाहिर है कि अगर सारे के सारे सुन्नी अवाम और कुर्द अवाम जो है वो अलग होते और खड़े होते अमेरिका के मफादात की हमायत में तो की जो मौजूदा हुकूमत है इस तरह से नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की नुमाइंदगी है कुर्दों की भी और के बाकी इलाकों के, खुद कुर्द भी तो अहले सुन्नत है बेशतर अक्सरियत उनकी, तो शियों की जैसे सबकी नुमाइंदगी मौजूद है, पार्लियामेंट ने उनको रास्ता नहीं दिया है अमरीका को और कोई रास्ता उसके लिए नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि वो अपना कब्जा जो है वो उसको खत्म करे और यहां से चल दे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस माजी के तजुर्बात को सामने रखा जाए और इराकी क्यादत के ने जिस अंदाज से उन्होंने इंतखाबात के बाद, मेरा ख्याल है ज्यादा मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए नूरुल मालकी और उनके साथियों को, अगरचे इस इंतखाबात से मां कबल की भी उनकी खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बाद में जिस अंदाज से 90 सीटें जो है दिलवाई गई और पैसा खर्च किया गया और ये कि अमेरिका ने चाहा कि उसकी मर्जी की हुकूमत आ जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इन सारे ग्रोहों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से और समझदारी का सबूत देते हुए अमरीकियों को जो है वो वहां से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। तो मेरा ख्याल है इतने वो समझदार हैं कि वो इन चीजों को समझते हैं और हालात को कंट्रोल कर लेंगे। मुझे तो जाती तौर पर मुझे उनकी दानिशमंदी पर और उनके गुज़श्ता तजुर्बात के पेश नज़र एतमाद है कि वो इंटेक्ट भी रखेंगे इराक को और इराक को मुस्तकबिल में एक अहम रोल इस खित्ते में जो है वो अदा करने के लिए तैयार करेंगे। याद हमें ये सामने रखना चाहिए कि एक जमहूरी और मुतहद इराक जो है वो खानदानी बादशाहतें कायम हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक है। उनका ख्याल ये है कि ये कामयाब अवामी हुकूमतों का जो तजुर्बा है ये तो उनके अपने अवाम को भी हिला कर रख देगा। पहले ही वो जो इस वक्त जिसको बहार कहते हैं अरब बहार, यानी उसके असरात जो है वो पूरे पूरे खित्ते पर जो है वो मौजूद हैं। और अगर इराक भी एक ऐसी मुत्तहिदा कुव्वत बनकर और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो जो खुशहाल इराक की तरफ अगर उसको ले जाए तो ये तो उनको वारा नहीं खाता है। तो लिहाजा और ये बात इराकी क्यादत भी समझती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जरूर इस इम्तिहान से भी ये क्यादत जो है वो सुरखरू होकर निकलेगी और एक मजबूत और मुत्तहिदा इराक जो है तरक्की करता हुआ और खित्ते में एक बेहतर रोल अदा करता हुआ मैं देख रहा हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। हमारे पास एक 1.5 मिनट का वक्त रह गया है, आखिरी सवाल भी मैं आप ही से करना चाहता हूँ। अमरीका तो इराक से अपनी जिल्लत के साथ वहां से इनखला का बदला लेना चाहता है। जो अरब हुकूमतें इराक में लाकानूनियत और फिरकावारियत और बदमनी फैलाना चाहती हैं वो क्या हासिल करना चाहती हैं?
मेरा ख्याल है कि अमेरिका के बारे में मुझे एक शेर पढ़ लेने दें कि निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मेरा ख्याल है अमेरिका का निकल खुद इराकी के इन मुल्कों को जो कभी अरब लीग को इस्तेमाल करते हैं कभी खलीज तावन काउंसिल को इस्तेमाल करते हैं और तारिक हाशमी ने दर हकीकत उन दोनों इदारों का नाम लेके उन्हीं की तर्जमानी की है। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ कामयाब नहीं होंगे। अगर अमेरिका की 1,70,000 फौज की मौजूदगी में इतने बड़े तागूत की मौजूदगी में अगर उनकी दाल नहीं गल सकी तो उनके चले जाने के बाद तो वो उनकी दाल नहीं गलेगी। वो जो हासिल करना चाहते हैं वो यही हासिल करना चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत वहां पर मौजूद न रहे कि जिसकी वजह से खुद उनके इकतदार को जो है वो खतरा हो। और वो उनका एक तरह है, आप देख रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो उन्होंने तो अपने आवाम को नहीं शरीक किया अपने हुकूमत के उसमें इंतखाब और किसी तरह की, तो वो नहीं चाहते कि एक जमहूरी इराक जो है वो फले फूले और तरक्की करे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। इसी के साथ हम शकील शमसी और यावर बुखारी साहब के भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन जैसा कि यावर बुखारी साहब ने साकिब अकबर साहब ने कहा है कि जब इराकी क़यादत ने इंतहाई दानिशमंदी से काम लेकर उस ज़माने में अमरीका की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, जब अमरीकी अफवाज इराक में मौजूद रही हैं और हर जगह उनका तकरीबन अमल दखल रहा है, तो अब अमरीकी अफवाज के निकल जाने के बाद इराक में लाकानूनियत और फिरकावारियत फैलाने की अमरीकी साजिश को नाकाम बनाने में यकीनन इराकी कायदीन और अवाम को कामयाबी हासिल होगी। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।